फोटो सेशन के लिए बुलाते हैं और टाइम पास के लिए बुलाते हैं।
कोशिश यही रही थी बीसीसीआई की, कार्पेट के अंदर आप लगा दें, उसको एक्सपोज ना करें।
वी स्पोक टू वकार एज वेल, तो वो आगे और फिर मिसबा, उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है।
पाकिस्तानी बॉक्सर हालात के हाथों नॉकआउट, IPL करप्शन स्कैंडल में कौन कौन बच गया और मिसबा वकार यूनुस का तजुर्बा इस्लामाबाद यूनाइटेड के कितने काम आएगा। खेल के मैदान से अब्दुलरशीद शकूर का सलाम। बॉक्सिंग वो खेल है जिसमें पाकिस्तान ने बैन अलाक्वामी सतह पर सबसे ज्यादा तमगे जीते हैं, वो चाहे ओलंपिक्स हों या कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाई मुकाबले हों या फिर कोई दूसरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट। पाकिस्तानी बॉक्सर्स ने रिंग में हमेशा अपना रंग जमाया है, लेकिन न जाने क्यों ये खेल और बॉक्सर्स पाकिस्तान में बेसरो सामानी का शिकार रहे हैं। लियारी हो या बलूचिस्तान, पाकिस्तानी बॉक्सर्स को कभी भी वो मकाम नहीं मिल सका जिसके वो मुस्तहिक हैं। यही वजह है कि कई बॉक्सर्स ने हालात से दिलबर्दाश्ता होकर मुल्क छोड़ने को ही बेहतर जाना। मोहम्मद वसीम पहले पाकिस्तानी बॉक्सर हैं जिन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आलमी एजाज जीता है, लेकिन माली मसाइल ने उन्हें भी घेर रखा है, क्योंकि प्रोफेशनल मुकाबले जारी रखने के लिए जो माली वसाइल दरकार होते हैं वो मोहम्मद वसीम को मयसर नहीं। मोहम्मद वसीम को वफाकी हुकूमत ने वादे के मुताबिक ऐलान करदा रकम दे दी, लेकिन खुद उनके अपने सूबे बलूचिस्तान की हुकूमत के वजीर आला ने उनसे किए गए वादे पूरे नहीं किए।
जी बिल्कुल, मैं जब जीता तो उन्होंने मुझे बुलाया, वहाँ पे CM बलूचिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि मैं आपको घर दूंगा और आप अमेरिका जाएंगे, मैं आपको आपके फ़ाइट के लिए स्पॉन्सर करूंगा। तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया और मैं कितने बार इनके पास गया और लेटर पर साइन खुद मैंने इसके हाथ से करा, उस पर डिस्कस लिख दी CM बलूचिस्तान ने। मैंने सूबाई गवर्नमेंट का कहा है कि सूबाई गवर्नमेंट में जिन लोगों ने मुझे बुलाया है और मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कहा है, मैं उसके बारे में कह रहा हूँ कि वो मतलब फ़ोटो सेशन के लिए बुलाते हैं और टाइम पास के लिए बुलाते हैं, तो अगर कोई नहीं करना चाहता और कोई नहीं कर सकता तो हमें नहीं बुलाया जाए, बस हम यही बात करते हैं।
मोहम्मद वसीम से मैंने पूछा कि बलूचिस्तान से कई बासलाहियत खिलाड़ी सामने आए लेकिन अब सूरतेहाल बहुत खराब है, इसका जिम्मेदार कौन है?
ये पॉलिटिशियन सारे बलूचिस्तान के, मुझे इन पर काफ़ी अफसोस है, इन्होंने बलूचिस्तान का बहुत हद तक बेड़ा गर्क कर दिया है, मुझे बहुत अफसोस है इस पर। बलूचिस्तान में कोई ग्राउंड नहीं है हमारे पास रनिंग के लिए, कोई जिम नहीं है जहाँ हम ट्रेनिंग करें, कोई हाल नहीं है यहाँ पर, जो गरीब लोग हैं वो पीसते पीसते और पीस रहे हैं।
मोहम्मद वसीम से मैंने जानना चाहा कि आपकी अगली फाइट किसके खिलाफ है और ये तमाम अखराजात कौन बर्दाश्त करता है?
मेरी फाइट आ रही है अब जापानी फाइटर के साथ, सब कुछ मुझे प्रमोटर कर रहा है और मैं अमेरिका जाता हूँ, कोस्टारिका जाता हूँ, पानामा जाता हूँ, अब कोलंबिया जा रहा हूँ, फिर मेरी ट्रेनिंग अमेरिका में होगी, मुझे कोरियन प्रमोटर ट्रेनिंग करा रहा है।
भारत में IPL करप्शन स्कैंडल के बारे में एक आम राय यह है कि मगरमच्छों पर हाथ डालने की कोशिश ही नहीं की गई। BCCI के एक साबिक सदर अनुराग ठाकुर का कहना है कि उस बंद लिफाफे को खोला जाए जिसमें करप्शन स्कैंडल में मुबैना तौर पर मुलविस नाम मौजूद हैं। सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि अब तक इस लिफाफे को नहीं खोला जा सका है। दिल्ली से आदेश कुमार गुप्ता।
मामला जरा संजीदा है, इसे खुद BCCI के साबिक प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर ने उठाया और कहा कि IPL साल 2013 में स्पॉट फिक्सिंग मामले में शामिल 13 लोगों के नाम सबके सामने लाए जाएं। गौरतलब है कि 2014 में एक बंद लिफाफे में स्पॉट फिक्सिंग में शामिल लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए थे। जिस लिफाफे में क्रिकेटरों के नाम थे उसको कोर्ट ने कभी खोला ही नहीं, लेकिन BCCI के खिलाफ जो मामले थे वो खोले गए। अगस्त 2015 में भारत के साबिक चीफ जस्टिस RM लोढ़ा की अगुवाई वाले पैनल पर ये फैसला छोड़ दिया गया था कि वो उस बंद लिफाफे को खोलकर देखना चाहते हैं या नहीं, जिस लिफाफे को जस्टिस मुदगल कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपा था। अनुराग ठाकुर ने अब ये मामला क्यों उठाया है, जवाब में क्रिकेट एक्सपर्ट विजय लोकपल्ली कहते हैं,
सडनली उन्होंने एक बॉम्ब छोड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को बेहतर मालूम है कि वो लिफाफा कब खुलना चाहिए और लिफाफे में जो भी बंद नाम है वो पब्लिक होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये एक अलग मुद्दा है। पर अनुराग ठाकुर उनके केस को जहाँ पे उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगाया गया, तो उनको लगता है कि ऑफिशियल्स के मामले में आपने तो एक्शन ले लिया, पर इस मामले में क्यों नहीं लिया है कि अगर वहां पे नाम है, कुछ नाम ऐसे हैं जो क्रिकेट को नुकसान कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि उनके नाम पब्लिक होने चाहिए।
बीसीसीआई ने खुद कहा था कि लिफाफा बंद ही रहे, लेकिन मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग में शामिल लोगों को साफ करते करते खुद पूरी बीसीसीआई का सफाया हो गया। यहाँ तक कि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को भी आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखाया गया। एक और क्रिकेट एक्सपर्ट अयाज मेमन बीसीसीआई को जिम्मेदार ठहराते हुए कहते हैं,
पहले भी हमने देखा है जब मैच फिक्सिंग का मामला आया था सन 2000 में, कोशिश यही रही थी बीसीसीआई की कार्पेट के अंदर आप लगा दें, उसको एक्सपोज ना करें, लेकिन उससे मसला हल नहीं होता है क्योंकि 10-12 साल में फिर से मैच फिक्सिंग का प्रॉब्लम शुरू हो गया था। तो बड़े से बड़े नाम भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, अगर आपको गेम में सफाई लानी है तो नाम सामने लाना चाहिए पब्लिक।
अब लाख टके का सवाल कि जब पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और सलमान बट जैसे बड़े नाम वाले खिलाड़ियों को सजा हो सकती है, तो लिफाफे में बंद नाम वाले लोगों को क्यों नहीं? क्या मामला पेचीदा है? विजय लोकपल्ली कहते हैं,
सलमान बट ने कॉन्फिस्केयर, ये जो इंसिडेंट हुआ था इंग्लैंड में था, वहाँ पे मैच फिक्सिंग और इस करप्शन के खिलाफ कानून है, तो कानून ही नहीं है। जब आप ये लिफाफा खोलेंगे तो आपके पास क्या सबूत है? अगर उन्होंने सबूत के साथ इतने नाम लिफाफे में रखे हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ये तो मुद्दा कोर्ट ही सॉल्व कर सकता है। हम सब तो सुनते थे कि ऐसा होता है, लेकिन लिख नहीं पाते थे या बोल नहीं पाते थे क्योंकि सबूत नहीं था। सबूत कैसा जोड़ा गया? पुलिस ने जोड़ा, जो ऑफिशियल एजेंसीज हैं उनके पास अपना इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है, सीबीआई के पास, आईबी के पास, तो वो करें। लेकिन ये डेफिनेटली आपने बात ठीक कही, ये बहुत पेचीदा मामला हो गया है।
इंडियन प्रीमियर लीग इंडियन पचड़ा लीग ना बने, इसके लिए जरूरी है कि इससे जुड़े सारे मामले सुलझाए जाए, जिससे आईपीएल पर भरोसा भी जम सके।
पाकिस्तान सुपर लीग में शरीक 6 फ्रेंचाइज टीमों की कारकर्दगी के जायजे के सिलसिले में आज जिक्र इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और तज्जिये के लिए मैंने जहमत दी इस्लामाबाद यूनाइटेड के सरबरा अली नकवी को, जिनसे मेरा पहला सवाल था कि गुज़िश्ता इवेंट में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया, बदकिस्मती से दोनों खिलाड़ी आप ही की टीम के थे, इस बार आप लोगों ने ऐसे क्या इकदाम किए हैं कि ये सूरत हाल दोबारा ना हो?
बहुत ज्यादा शॉकिंग था फॉर मी इंडिविजुअली, फॉर द टीम एज अ होल। आई थिंक देखें, अब उसमें जब सेट आते हैं तो एज अ स्पेशली इन स्पोर्ट्स एज वेल यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो हमारे पास मिसबा वाज अ कामिंग फोर्स, डीन जोन्स, वसीम थे, तो द आइडिया वाज टू ब्रिंग द टीम टुगेदर एंड टेल देम टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। जो हमने किया, जो हम कर सकते थे हमने उस वक्त किया, हमारा सारा बैटिंग और बॉलिंग सारा जो मैकेनिज्म था वो उल्टा पुल्टा हो गया था। आई थिंक पीएसएल 3 के लिए ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग इज वेरी क्लियर इज जो हमने पिछली दफा किया, देयर इज जीरो टॉलरेंस।
अली नकवी से मेरा अगला सवाल था कि मिसबाहुल हक और वकार यूनुस पाकिस्तानी टीम में भी एक साथ रहे हैं, दोनों का तजुर्बा इस्लामाबाद यूनाइटेड के कितने काम आएगा?
प्लान उस तरह नहीं था कि उन दोनों को साथ लेकर, बट एज द अपॉर्चुनिटी केम अप एंड एज वी स्पोक टू वकार एज वेल, तो वो आगे और फिर मिसबा, उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। वकार ने डीन के जोन के साथ भी काम किया हुआ है, मिसबा और डीन जोन्स ने पिछले 2 साल से बहुत क्लोजली काम किया हुआ है। सो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम जो इन तीनों की है, प्लस इनके नीचे भी जो हमने फिजियो और जो है वो सारे कंसिस्टेंट हैं फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोचिंग टीम फॉर आर यंगर प्लेयर्स।
अली नकवी से मैंने पूछा कि नया टैलेंट सामने लाने के लिए आप लोगों की क्या कोशिशें रही हैं?
पीएसएल 1 में जो हमने प्लेयर्स दिए नेशनल टीम को, अब वर्ल्ड कप आपको भी याद है, फरवरी के बाद फौरन वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे। वर्ल्ड कप में 3 लोग हमारे बच्चे जो पहले नहीं थे टीम में, नेशनल टीम में, वो सिलेक्ट हुए। उनमें से अनफॉर्चुनेटली कुछ अब नहीं खेल सकते बिकॉज ऑफ द रीज़न यू जस्ट मेंशन, लेकिन बाकी जो हैं वो गए। समी का हुआ, बाकी सो एक तो वो हुआ कि हमने वो दिया, फिर आप दूसरे में देख लें शायद आपको आइडेंटिफाई करना, वो इमर्जिंग में, वो तो आखिर में, बिकॉज वी न्यू एंड वी हैड अ स्ट्रेटजी, तो हमने उनको पिक किया। रुमान को आप देख लें, वो हुसैन तल्लत को आप देखें, वो हैं अमाद हैं, सो वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल। तो हमारा फोकस ये रहा है कि जो आपका अभी अच्छा इतना टैलेंट अवेलेबल है, हम इनको कोचिंग अच्छी कराएं, इनको ऊपर लेकर जाएं, और जैसे ही ऊपर जाएंगे तो नेशनल टीम में ये खेलेंगे एंड देन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग।
अली नकवी से मेरा आखिरी सवाल था कि पीएसएल का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं?
आप इस टीम में देख लें कौन कौन बच्चा है, हसन अली को आप देख लें, देखना आप रुमान को आप देख लें, आप शायद आपको देख लें, आप फखर को देख लें, पुराने भी हैं वो, अच्छे भी हैं वो भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टीम नाउ इज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय द पीएसएल, और सिर्फ 2 सीजन हुए, صرف دو سیزن. آئی پی ایل کو تو اب 10 سیزن ہو گئے، 11 سیزن ہو گئے بیسیکلی. اور بی بی ایل کا جو ہے وہ کرکٹ آسٹریلیا کرواتا ہے، وہ بہت ڈفرینٹ ماڈل ہے. وہ اس میں وہ پیسے کا نہیں سوچ رہے، اس میں وہ فوکس کرنے انویسٹمنٹ کرنے کا فار دا لاسٹ 5 years 6 years. اگر ان دو بڑی چیزوں کے ساتھ ود ان 2 years آپ کی لیگ ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جائے ایز اے ٹاپ 3، تو یہ دیٹس اے بگ اچیومنٹ. اسی کو آپ فاسٹ فارورڈ کر دیں 2 سے 5 سال آگے چلے جائیں آپ، تو آپ کے انشاءاللہ جو بچے ہیں، جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ٹرانسپیرنسی، جب پورا ملک دیکھے گا پی ایس ایل کو تو ان کو پتا ہوگا کہ جی سب سے ٹاپ 15 بچے کون ہیں، تو چیز چھپ نہیں سکے گی. تو جو ٹیلنٹ کی ڈسکوری میں جو سب سے بڑا ایشو جو ہمیں کنسرن ہوتا تھا ایز انڈیویجول ایز اے پاکستانی، کہ جی پتہ نہیں ٹیلنٹ سے ہی سامنے آیا کہ نہیں آیا، کوئی سفارش سے نہیں آ گیا کچھ، یہ پی ایس ایل سب سے زیادہ اس چیز کو ختم کرے گا.
اگلے ہفتے سنیے گا پی ایس ایل میں شامل ہونے والی نئی ٹیم ملتان سلطان کے بارے میں. اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ، لاہور سے سلطان محمود.
ملیشیا میں افغانستان نے اے سی سی انڈر 19 ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا. کوالالمپور میں کھیلے گئے فائنل میں افغانستان نے پاکستان کو 185 رن سے ہرایا. افغانستان اور زمبابوے اگلے سال فروری میں شارجہ میں کرکٹ سیریز کھیلیں گے. سیریز میں 2 ٹی20 اور 5 ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میچ شامل ہیں. ملیشیا میں پاکستان نے ایشین انڈور روئنگ چیمپئن شپ کے مکس 4 میں گولڈ، لائٹ ویٹ مینس پیئر میں سلور اور لائٹ ویٹ مکس ایونٹ میں برونز میڈل جیت لیے. ورلڈ ٹیم اسکواش چیمپئن شپ اتوار کے روز سے فرانس میں شروع ہو رہی ہے. 24 ٹیمیں چیمپئن شپ میں حصہ لے رہی ہیں، جنہیں 8 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پاکستان کو پول اے میں رکھا گیا ہے، جس میں مصر اور سوئٹزرلینڈ بھی شامل ہیں.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.